और जो आगे आ गए उनको चिंतन करना है, पीछे वाले श्रोतागण रहेंगे, कोई नहीं आप दोनों तो पीछे बैठे रहो, कल की मुरली याद करो, पहुंचो कल सवेरे संडे। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप शेष जीवन, आज इस पे ही चर्चा करेंगे। हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है, मिला है, माताओं से तो पूछ नहीं सकते, दूर है, मिला है, नशा है इस चीज का कि संपूर्ण ज्ञान मिल गया है। ये छोटी चीज नहीं है, ज्ञान अज्ञान अंधकार था चारों ओर, सत्य का कुछ पता नहीं था। किताबें पढ़ी जा रही थी, शास्त्र पढ़े जा रहे थे, खोज हो रही थी। मैं सुनाया करता हूँ, बहुत साल पहले मैं एक बार पूना में गया, थोड़ी माताएं कोशिश करो आगे आगे आने की जो आ सकते हैं, तो बताया यहाँ एक महाविद्यालय है जिसमें 1100 स्कॉलर विद्वान शास्त्रों पे खोज करते हैं, वो चलता ही रहता है सदा, और सत्य का कहीं भी पता नहीं चलता। और बाबा ने बड़े बड़े रहस्य हंसते बहलते खोल दिए। याद दिलाऊं मैं आपको, दो चार दिन पहले ही मुरली में आ चुका है ये, तो हम सब जानते हैं आत्माएं कहां से इस धरा पर आई हैं। बोलते जाना जरा, मुझे पता लगे, कहीं माताओं को ये भी ना पता हो कहां से आई हैं। गुह्य बात जो बाबा ने बताई, जहां तक शास्त्रवादी वेदवादी शंकराचार्य सोच नहीं सकते कि परम धाम में हर धर्म की आत्मा का सेक्शन, ये छोटी बात नहीं है, जंप नहीं दे सकती आत्मा की, इधर से लाई नहीं इधर आ जाऊं। और बहुत अच्छी बात कही थी कि जहां जिसका स्थान निश्चित है वो ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाती है। एक आत्मा शरीर छोड़ रही है, ऑटोमेटिकली वहां जा रही है जहां उसको जाना है। रोज सारे संसार में कितनी लोग आत्माएं शरीर छोड़ती होंगी पता किसी को? आता रहता है ये लगभग 2 लाख, और 2.5 लाख जन्म लेते हैं। कौन उनको कहता है वहां जाना है, तुम्हारी माँ उधर है पाकिस्तान में, कौन कहता है बताओ? ये गति बहुत गहन है, इसको जानने के लिए ब्राह्मणों में भी दिव्य बुद्धि का होना अनिवार्य है। ये वाइब्रेशंस के द्वारा आकर्षण होता है आत्मा को, कोई उसको गाइड नहीं करता कि तुम्हें यहाँ जाना है, बाबा बताता हो यहाँ जाना है, बाबा ने कुछ फरिश्ते रखे हों जो सबको भेजें कि यहाँ जाओ वहां जाओ, ऑटोमेटिक है। ये सारे संसार का खेल ही ऑटोमेटिक है, और इसके ये आधारित है आत्मा के वाइब्रेशंस पर। समझते हैं माताएं वाइब्रेशंस क्या होते हैं? आत्मा की जो स्थिति है उससे चारों ओर तरंगे फैलती हैं, किरणें फैलती हैं, ये सब तो सब समझते हैं ना, वो दूर दूर तक फैल जाती हैं, सारे संसार में फैली हुई हैं। हम जो यहां सोच रहे हैं उसकी किरणें भी सारे संसार में फैली हुई हैं। आकर्षण होता है समानता में, समान वाइब्रेशंस में आकर्षण होता है। तो बाबा ने आत्मा के बारे में भी अति गुह्य ज्ञान दिया। जैसी आत्मा की स्थिति, और एक रहस्य सुन ले सभी, वैसा ही गर्भ में मनुष्य का शरीर बनता है, उसका ब्रेन बनता है, दिल बनता है, शरीर के अंग बनते हैं। ये बहुत बड़े रहस्य हैं जिसको कोई वैज्ञानिक डॉक्टर जान नहीं सकता। कौन जानते हैं? बिना पढ़ी लिखी माताएं जानते हो? देखो हाँ करती है माता जी। कितने क्लास तक पढ़ाई की है तुमने? पता ही नहीं क्लास क्या होती है, नहीं पता। स्कूल का दरवाजा खोला था कभी? नहीं खोला इसने भी, इन्हें स्कूल नहीं देखा। और ये सब माताएं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, गुह्य रहस्य खोल दिए इस सृष्टि चक्र के। और सबसे बड़ा रहस्य खोला जो आज भी था वरदान में शायद, सृष्टि की संपूर्ण स्थिति का आधार कौन है? हम। ये छोटी बात नहीं है, इसको समझ लें सभी। हम रोएंगे तो माताएं नहीं बोल रही, भाइयों ने बोला। हम रोएंगे तो, हम हंसेंगे तो संसार हंसेगा। एक एक पत्ता खिलखिलाने लगेगा कल्प वृक्ष का। इसलिए अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। तो सत्य ज्ञान का स्वरूप देखना चाहता है संसार। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा गीता क्या है, उत्तर दिया मुझे देख लो, मेरा जीवन देख लो, जो कुछ गीता कहती है वो जीवन में है। ज्यादा तो नहीं बोला, लोग अभिमान समझेंगे। जो बाबा की मुरलियों में है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारे जीवन में है। ये है ज्ञान का सत्य स्वरूप जो संसार में नहीं है, जो सन्यासी और महात्माओं के पास नहीं है। मुझे कहानी याद आ गई इसी छोटे मधुबन में, तब ये इससे भी छोटा था, एक तिहाई हिस्सा। ये मधुबन जो बड़ा है ना, इसका एक तिहाई हिस्सा था, तिहाई का चौथाई, जिसमें मुश्किल से 100 से भी कम लोग रह सकते थे। एक सन्यासी आया बाबा के लिए क्रोध भरे हुए, हाथ में डंडा, बड़ा क्रोधी, दादा से मिलना है। बाबा को बताया गया, जानकी दादी यहां थी, उसने बाबा ने दादी जानकी को भेजा। अभी बहन गई तब वो बड़ी तो नहीं थी ना, छोटी आयु थी, 30-32 साल होगी। तो वो सन्यासी सिर नीचा करके बैठा रहा, कुछ सुनता रहा, कुछ बोलता रहा। गुस्सा तो उसको बाबा पे था ना। तो जब 5-10 मिनट हो गए तो जानकी दाई तो आप जानते हैं, ज्ञान में बड़ी तेज रही हैं वो, अब तो बुजुर्ग हो गए ना, अब की बात छोड़ दो, ज्ञान में भी सबसे तेज। तो कहा, महात्मा आप ऊपर आंख उठाकर क्यों नहीं बात करते? तुरंत कहा, मैं नारियों के आगे ऊपर आंख नहीं उठाता। तब दादी जानकी का सारा ज्ञान जागृत हो गया। कहा, महात्मा आप तो कहते हैं सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो नारी में भी तो ब्रह्म है, उसे देखने में क्या अर्जा है? बस उसका सारा अभिमान चकनाचूर। और बड़ी शांति से 5-10 मिनट सुन के वापिस चला गया। ये सत्य घटना है। शंकराचार्य, दूसरी सुनो कहानी, क्या हुआ है, क्यों धर्मों में गिरावट हुई है। शंकराचार्य पहला अपने 5-7 शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक चांडाल, उन दिनों चांडाल कहते थे, अब तो ये शब्द नहीं है, अब तो कोई बोलेगा तो उससे लड़ाई हो जाएगी, अपने कुत्ते को लेके बड़ी मस्ती से चला आ रहा है उसी रास्ते पर। उसके शिष्यों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे हटो, शंकराचार्य आ रहे हैं, हटो हटो हटो। वो हटने, वो जैसे सुन ही नहीं रहा, मस्ती से आ रहा, बिल्कुल पास आ गए। अब ये खड़े हो गए। तो उसने कहा, आचार्य आप तो कहते हैं सब एक ही ब्रह्म है, ये शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया ना अद्वैतवाद, एक ही है और कुछ है ही नहीं, आत्मा भी नहीं, केवल एक, तो मेरे और आप में भेद क्यों? शंकराचार्य का भी दिमाग खुल गया, वहीं खड़े हो गए सब। और ये कहते ही वो चंडाल था ही नहीं वहां, तो दिखाया है शिव स्वयं आए थे उसको बताने कि जो शास्त्रों में है वो प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, ये नहीं है ना। और बाबा ने क्या सिखाया, जो ज्ञान है, जो ज्ञान में है वो जीवन में। अब हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जो संसार के लोग, माताओं के बच्चे, आपके पति, आपके समाज वाले आपका विरोध ही न करें, आपको देवी माने, आपके चरण स्पर्श करें, ये सोच के सभी को चिंतन करना है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा है ना, बहुत बड़ा नशे की बात है। त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, दिव्य बुद्धि दे दी, सब कुछ जान लिया, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। मुक्ति पे शास्त्रवादियों में, आचार्यों में हजारों साल से वाद विवाद होता रहा। मुक्ति के बाद आत्मा लौटती है, कोई कहते नहीं लौटती, कोई कहते लौटती है, दो मत थे, हमेशा विवाद होता रहा, निर्णय कुछ नहीं हुआ। बाबा ने दोनों बात कह दी, अभी मुरली में था, लंबा समय तो रह सकती है पर तो सदा नहीं। ठीक है 50 साल कम कर दो बस, 5000 से इतना रह सकती हैं, लेकिन सदा काल नहीं। रहस्य बता दिए कि मुक्ति में आत्मा को कोई अनुभूति नहीं, इसमें भी आचार्यों के बीच में भेद थे। आधे मानते थे मुक्ति में आत्मा परमानंद में रहती है, और आधे मानते थे वहां कोई अनुभूति नहीं। बाबा ने सब कुछ खोल के बता दिया है। तो हमारा जीवन ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए। पांच पांच बातें करनी है, बस ज्यादा नहीं, टॉपिक तो लंबा हो सकता है। पांच कौन सी धारणाएं सिद्ध करेंगी कि इनके पास सत्य ज्ञान है, और पांच से पांच कौन सी बुराइयां जो नहीं होनी चाहिए, जो ज्ञान के विपरीत हैं। पहली धारणा पवित्रता, जो कहीं नहीं थी, पवित्र रहने का बल ही सत्य ज्ञान से प्राप्त हुआ। सबको पता होना चाहिए, सन्यासी आज मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ 99% सन्यासी पवित्र नहीं है, मैं उनके आगे भी बोल देता हूँ 1% है केवल। क्यों? सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य ज्ञान का पहला प्रमाण पवित्रता, और पवित्रता के आधार से चेहरों पे क्या चमक, तेज, सुख, शांति, खुशी। इसी से आत्माओं को पता चलता है इन्हें क्या मिला है, न केवल ज्ञान मिला लेकिन ज्ञान दाता भी मिल गया। पढ़ के ज्ञान नहीं लिया, किसी गुरु से सुन के नहीं लिया, ज्ञान दाता ने दिया, दोनों संपूर्ण ज्ञान और ज्ञान दाता भी। दूसरी धारणा, अब प्रैक्टिकल जीवन पे आ जाओ, व्यवहारिक जीवन, चाल चलन में क्या हो, ऐसी चार बातें निकालेंगे। पहली चीज सरलता, सहज जीवन। देखो जैसे जैसे संसार आगे बढ़ा, अगर पिछले 40 सालों के संसार को देखा जाए, आप में से कईयों की उम्र 40 साल नहीं है, जो माताएं यहाँ बैठी हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको तब का पता हो, 40 साल पहले सब काम हाथ से लिख कर हो जाता होता था, बैंकों में भी हर ऑफिस में हाथ से सब कुछ लिखा जाता था। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर आने वाले थे, सबको पता हो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 84-85 में, तब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत में लाया, पहले नहीं था। तो सब जगह एक अफवाह फैल गई कि अब तो कंप्यूटर आ जाएंगे, मनुष्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेकारी बढ़ जाएगी, काम सहज हो जाएगा। कंप्यूटर आ गए, बहुत लोगों को काम मिल गया, लेकिन हुआ क्या, सहज होने की बजाय मनुष्य ज्यादा बिजी हो गया, बल्कि वो भी लोग बिजी हो गए जिन्हें कुछ काम ही नहीं है, पता है माताओं को, वो भी बिजी हो गए, भाई सब जानते हैं। सारा ही दिन बिजी रहते हैं, काम कुछ नहीं है, सारा दिन बिजी है, फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा के सत्य ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रमाण सरल जीवन। और ये कैसे हुआ, सब जान ले इस गुह्यता को, जितना मन शांत उतनी ही बुद्धि की शक्ति तेज, और जब मन और बुद्धि दोनों तेज तो कार्य फटाफट, शक्तियां बढ़ गई कार्य फटाफट। एक कमजोर व्यक्ति काम करे और एक शक्तिशाली करे, समय का अंतर हो जाएगा ना, शक्तियां बढ़ गई, मन बुद्धि की शक्तियां बढ़ गई, उनकी योग्यता भी बढ़ गई, और क्या बढ़ गया, जो काम सरल हो गए हैं, निर्णय शक्ति बढ़ गई। माताएं बताओ, किचन के काम सरल हुए घरों में या नहीं हुए, क्यों, ये भी सोचो क्यों, सोचना है, सरल तो हो गए पर क्यों हुए, मन बहुत खुश रहने लगा, एनर्जी लेवल बढ़ गया, न केवल किचन तो मैं ऐसे ही कहा, सब काम सरल हो गए। तो सरल जीवन हो, इसके विपरीत अगर जीवन में ये हो तो लोग हंसेंगे, क्या हो, सरलता के विपरीत टेंशन हो, सीधी भाषा, जटिलता को लोग नहीं समझेंगे, टेंशन रहती हो, चल रहे तो भी टेंशन, बात कर रहे तो भी टेंशन दिख रही है, बाइक चला रहे तो भी टेंशन दिख रही है, समझते ना माता है, टेंशन 10 बच्चे नहीं, कोई सोचे टेन सन, ये नहीं, तनाव, भारीपन, सहज जीवन हो, हर कार्य सहज रूप से किया जाए। समस्याएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, माताएं तो समस्याओं को छोड़ के मधुबन में आ गई, बड़ा अच्छा किया, सेवा में आ गई, नहीं तो माताओं से छूटता नहीं है, बहुत काम, ये काम, वो काम, आप सब आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मुक्त तो हो जाते हैं ना एक दो मास। एक माता फोन कर रही शाम को मुझे, बेचारी ने एक बार फोन किया कटा, दोबारा किया बोल ही नहीं रही, फोन तो किया, मैंने कहा भाई बोलो, कौन बोल रहे हैं, बिहार से बोल रहे हैं, मेरा लड़का मुझे फोन ही नहीं करने दे रहा आपको, एक लड़का एक लड़की दोनों बहुत बिगड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो लड़का वहीं था, उसके आगे बोल रही थी वो, उसकी आवाज मुझे सुन रही है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कितने समय से ज्ञान में हूँ, 16 साल से ज्ञान में हूँ। देखिए ऐसी चीजें हैं कि मनुष्य को परेशान करती है ना, यंग दोनों लड़का और लड़की, दोनों ने बीए कर लिया है, अब वो कंट्रोल में नहीं है इनके, कहा बहुत बुरा बुरा बोलता है मुझे लड़का, गालियां देता है, सारा दिन गंदी बातें करता है, तो माताओं को भारी लगता है ना, कहा माताओं ने बच्चे होने की कल्पनाएं की थी, लड़का हो लड़की तो पैदा ही ना हो, होते ही मर जाए ये सोचा था, और लड़के हुए तो नाक में दम, अब सोचते हैं ये इससे तो अच्छा लड़की होती, शादी कर लेते, अपने घर जाती, शांति रहती, कि लड़कों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। माताओं की कहानी है ना रोज, एक ने बताया जब मैं पैदा हुई हमारे घर में मातम मनाया गया था, माताएं मेरे से मिलने गए अंसरोर में 3-4 दिन पहले ही, कहा मैं बहुत दुखी हूँ, उस बेचारी का जीवन सारा ऐसा कि पैदा हुई तो मातम मनाया गया, पढ़ने लिखने में ढीली रही, किसी ने उसको प्यार नहीं दिया, शादी हुई तो पति से झगड़े होते रहे, बच्चे हुए तो बच्चे बड़े दुखदाई हो गए, अब ज्ञान में आई। कहा मैंने कोई सुख नहीं पाया जीवन का। सोचो, अब मैं वही समझ गया, जन्म हुआ और घर में मातम मनाया गया, जरा भी खुशी नहीं। क्यों? नहीं, केवल ये नहीं कि बच्ची, वो तो माँ बाप सोचते हैं लड़की हुई, असली काम है, असली कारण है पाप कर्म बढ़े हुए कि जीवन में सुख ही नहीं मिला। मनुष्य होते कहा अच्छा धन हमारे घर में, कोई सुख नहीं। अच्छे धनवान के घर में शादी हुई, कोई सुख नहीं। परेशानियों में 45 साल बिता दिए हैं मैंने, ज्ञान में आई। तो पहले तो मैंने उसे कहा कि बलिहारी इन दुखों की, आगे आप बोलो, जो भगवान से मिला दिया तुमको, अब खुश हो जाओ, भूलो इस सब को। कहा भूल ही तो नहीं पाती, सोचती हूँ पति ने बड़ा कस दिया, इससे बदला लूंगी, माँ ने मातम मनवाया था घर में, इसको सीधा करूंगी। वो तो आप ही सीधी हो गई होगी बेचारी, जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो सुखी थोड़ा ही रहते हैं, वो खुद ही भी दुखी रहते हैं। मैंने उसे पूछा, तुमने अपने बच्चों को सुख दिया? जरा होमली बात कर रहा था मैं, वो सोचने लगी दिया या नहीं दिया, क्योंकि जो मनुष्य खुद परेशान है वो बच्चों को सुख क्या देगा, बच्चे तो प्यार के प्यासे ही रह जाएंगे, तड़फते रह जाएंगे, कहाँ सुख देंगे। मन परेशान, सिर पे हाथ रख दिया बच्चे के, तो दिमाग को क्या जाएगा बच्चे के, परेशानी, और दुखी हो जाएगा बच्चा। ये बातें मैंने क्यों सुनाई आपको, कलयुग के एकदम अंत में हम पहुंचे हैं, परीक्षाओं के दौर से सभी को गुजरना पड़ रहा है, और अब ये बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कठिन परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, जैसे IAS IPS, भाई तो जानते ना क्या होता है, ऐसे कंपटीशन के लिए पेपर बड़े कठिन आते हैं, क्योंकि तो लाखों बच्चे बैठेंगे, कम से कम 10 लाख चुने जाएंगे, 400 450 कठिन से कठिन क्वेश्चन होते हैं, 400 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में हल करो, बुद्धि की परीक्षा। और हमारा एग्जाम कौन सा होगा, क्या मिलेगा हमें इसके बाद, माताएं तो नहीं बोलेंगी, भाइयों से इसलिए पूछ रहा हूं। अरे वाह, देखो इस बहन ने बोला, राजपद भी एक जन्म के लिए नहीं, अथाह धन संपदा से युक्त पद मिलने वाले हैं। तो पेपर कठिन आएंगे या ढीले डाले, कि लिखा आएगा तुम कौन और हम लिख देंगे आत्माओं और हो गए पास, हो गया ऐसा, कठिन पेपर आएंगे। इसलिए सभी अपने को तैयार करें सहज जीवन बनाने के लिए। क्या तैयार करें? जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसे स्वीकार करना, जो कठिन काम होगा। अब सभी इस पे गहरा चिंतन करो, माताओं को खास कह रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है, चाहे वो आपके बच्चे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपका दिल हैं, समझ गए ना, हिसाब किताब उनको भी खुद देना है, हमें नहीं उनको खुद। हमारा तो उनसे बहुत प्यार है, रोना ही चाहिए, परंतु हिसाब तो उनका अपना है ना, कौन कितने पाप कर्म करके आ गया ये हमें तो पता नहीं ना, हम तो केवल ये देखते हैं ये मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, लेकिन पाप कर्म। इसलिए अब जो कुछ होगा, मैं लक्ष्य देना चाहता हूँ, सब जो मधुबन वाले बैठे हैं और समर्पित हैं, सेवाधारी भाई भी, अब जो कुछ होगा उसे देखने के लिए स्वयं को तैयार करना है। मुझे याद आती है कहानी, मुझे बहुत आकर्षित किया था, महाभारत युद्ध होने से पहले, बहुत पहले, व्यास महलों में आए हस्तिनापुर में, और 3 बुजुर्ग माताएं थी, सत्यवती, जो उनकी सबकी दादी थी, परदादी अंबिका और अंबालिका, जो धृतराष्ट्र और पांडु की मां थी, उन्हें कहा कि अब जो कुछ यहां होने जा रहा है उसे तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए अब मेरे साथ वन में चलो, आश्रम में रहो। चली गई तीनों, क्योंकि वो देख नहीं सकती, माताएं नहीं देख सकती अपने बच्चों का संहार, गांधारी नहीं देख पाई उसके 100 पुत्र मारे गए, धृतराष्ट्र का तो क्या बुरा हाल था, भीम को पकड़ के दबा दिया था उसकी मूर्ति को, कितना गुस्सा था उसको। तो सोच लें आप इस बात पर, जो कुछ होने जा रहा है उसको देखने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो होगा, हम कहें वो ना हो ये नहीं होगा, वो तो होगा। लेकिन जैसे बाबा उस सब को ऊपर बैठकर देखेगा, वैसे ही हमें भी देखना होगा। तैयार करें, आप अभी से तैयारी करें साक्षी होने की, हिसाब किताब सब चुक तू कर रहे हैं, उन्हें मदद करने की, रोने की नहीं, मदद करने की, उन्हें सकास देने की, ताकि उन्हें बल मिले, सहन करने की शक्ति मिले। सरलता, तीसरी क्वालिटी जो ज्ञानी आत्माओं के जीवन में लोग देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में बोलो, निश्चिंतता। ये तो थोड़ी बहुत बड़ी है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, निश्चिंत जीवन। भगवान साथ दे रहा है तो निश्चिंत जीवन। लेकिन मैं एक मोटी चीज पे आपका ध्यान दिलाऊं, तीसरा निश्चिंत, चौथी बात वाणी। वो तो प्रैक्टिकल देखते हैं ना लोग, अगर क्रोध आता होगा हमें तो लोग दूर हो जाएंगे, हम कितना भी उन्हें ज्ञान सुनाओ उन पर असर नहीं होगा। यदि हमें अभिमान होगा कितना भी ज्ञान सुनाओ असर नहीं होगा। यदि हम वाणी कटु बोलते होंगे तो व्यवहार में इसका बहुत बुरा असर होता है, इसलिए लोग, आपके परिवार के लोग सभी को बहुत मृदु भाषी देखना चाहते हैं, बहुत मीठे, एकदम बोल ऐसे हो कैसे, अब इसका उत्तर भी बहने देंगी, नहीं मैं बड़ी बात सुनना चाहता हूं, हैं? रतनजड़ित बोल, रतन जड़ने में तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको बोल में, थोड़ा जल्दी काम हो जाए ऐसा बोलो, वरदानी बोल, सुखदाई बोल, दूसरे के गरम दिल को शीतल करने वाले बोल, लोगों के बोल हैं शीतल में भी आग जला देने वाले, ऐसे बोल होते हैं कि पानी भी जल उठे, और हमारे बोल अग्नि को शीतल करने वाले हो जाएं। तो ये प्रैक्टिकल व्यवहार से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, निश्चिंत जीवन। अगर ज्ञान लेने के बाद, अगर भगवान मिलन के बाद, क्या संसार की भागदौड़ में मनुष्य लगा हुआ है, पैसे के पीछे दौड़ रहा हो, मुरली सुनने का भी टाइम ना हो, संडे संडे आता हो भागदौड़ते, तो लोग मानेंगे इसको भगवान मिला? बिल्कुल नहीं। लोग देखना चाहते हैं भगवान मिला माना, मेरे अपने जीवन का अनुभव है, हमारे एक रिलेटिव कट्टर आर्य समाजी हमारे घर में आए, तब मैं छोटा था, नशा तो बहुत होता ना, ज्ञान लिया ही था, सेंटर तो कोई नहीं था, किताबों से ज्ञान लिया, वो आए हवन करते हैं आर्य समाजी, रोज 5 हवन करते थे हमारे ही घर में वो सवेरे सवेरे, तो हमें, मुझे देखता था वो कि इसको ज्यादा रुचि नहीं है हवन में, तो बोला मुझे, मैंने उसे कहा हमें तो भगवान मिल गए, ये तो नहीं पता था ना ज्ञान क्या देना, हम भी छोटे थे, और वो प्रिंसिपल भी था एमए संस्कृत और कट्टर आर्य समाजी, यंग था वो भी, तो मुझे क्या कहा उसने, अगर तुम्हें भगवान मिल जाते तो तुम यहां होते। सच्ची बात कही, लग गई मुझे ये, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं चलो ना जहाँ भगवान है। लग गई, सच में लग गई थी ये बात, मैंने कभी किसी को सुनाई नहीं, पर इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे लगा ये ठीक कहते हैं। तो लोग देखना चाहते हैं प्रभु मिलन हुआ है इनका, तो ये तृप्त हुए या भी संसार में भटक रहे हैं, धन के पीछे, पदार्थों के पीछे, आसक्तियों के पीछे, रसों के पीछे, अब भी तो ये नहीं भटक रहे। माताओं को बड़ी इच्छा होती है बच्चे की शादी हो, क्या जाए घर में, मैं माताओं से पूछ रहा हूँ भाइयों से नहीं, भाई फटाफट उत्तर दे रहे हैं, माताएं उत्तर दो, बहुत दहेज आ जाए, देखो उसके बच्चे की शादी हुई सारा घर भर गया सामान से, हमारा घर खाली है अभी, बहू आई बहुत सामान ले आई, दहेज लाई, माल बहुत लाई, लेकिन आ गई लड़ाकू, सास का जीना मुश्किल कर दिया, अब कहने लगी भाई इससे तो तभी अच्छे थे पहले, इस दहेज ने और बहू ने तो सुख शांति सारी छीन ली। आप कहेंगे मैं ये कैसे जानता हूँ, माताएं सुनाती हैं आके कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ही गलती की। इसलिए लोग क्या देखना चाहते हैं, प्रभु मिलन हुआ तो इनका जीवन तृप्त, अंदर से आवाज निकलती रहे मिल गया सब कुछ, अब सूखी रोटी में भी आनंद, झोपड़ी में भी आनंद, ठीक है या नहीं। झोपड़ी तो किसी को नहीं है, बाबा के बच्चे को, अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन भटकन न हो मन की, तृप्त आत्मा बन जाए हम। और बोलो, सत्य ज्ञान मिला और सत्य ज्ञान का दाता मिला, मुख से बाबा के शब्दों में क्या निकलने चाहिए, ज्ञान रतन, न के पत्थर। कभी बाबा ने कहा मुख से निकलना चाहिए दुआएं, न के धुआं, कईयों के मुख से धुआं बहुत निकलता है, चिमनी से काला काला धुआं निकलने लगता है। और आगे चलो, बोल दिया था किसी ने हमें बहुत नम्र चित्त होना चाहिए, ये हमारे सत्य ज्ञान और इस अलौकिक जीवन का एक सुंदर प्रमाण है। और बता दे तीन बात, आठ कर दे इन्हें, हाँ ये संबंधों में मधुरता, व्यवहारिक बात आ गई, ठीक है, ये भी मधुरता, संबंधों में मधुरता, जो कड़वाहट है आजकल, ये कड़वाहट भी अति में पहुंचती जा रही है, थोड़ी नहीं है, आज सबसे ज्यादा टेंशन परिवारों में इसीलिए है कि संबंधों में मधुरता नहीं, कोई किसी को सुखी देखना नहीं चाहता, कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, कड़वाहट भर गई है संबंधों में मधुरता, कौन लाएगा, हम या वो, ज्ञान हमारे पास है, इसलिए पहल हमें करनी है, ये नहीं सोचना वो ऐसा क्यों करते हैं, बड़े हम हो गए, अच्छी शुरुआत बड़ों को करनी है, हम हो गए पूर्वज, सभी अपने स्वमान को आगे बढ़ाएंगे, मैं महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ, बड़े छोटे नहीं, तो हमें सदैव देना है, जिनको अच्छा पुरुषार्थ करना है, संबंधों में मधुरता लानी है, सबको कुछ देना है, वो ये अभ्यास करें, हम बड़े हैं हमें देना है, लोग कड़वाहट दें हम मधुरता दें, लोग बुरा बोलें हम अच्छे वचनों की बरसात करें, इसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत तो है, मेहनत तो चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जीवन में, उसे ये भी आ जाएगा क्या होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बोल में, व्यवहार में। कई हमारे बाबा के बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, जिनका जीवन तेजी से बदल गया, तेजी से। एक ने यही अनुभव सुनाया था ओम शांति भवन में बहुत पहले, जब बाबा ने 6 मास क्रोध मुक्त होने का काम दिया था, याद होगा 2 बार दिए गए ये काम, बहुत साल पहले 6 मास के लिए काम दिया था, सभी को क्रोध मुक्त रहना है, तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था। तो उसने स्टेज पर अनुभव सुनाया कि क्रोध मुझे बहुत आता था, सब सारे ऑफिस वाले डरते थे, मैंने संकल्प कर लिया मुझे क्रोध नहीं करना है। ऑफिस में पहुंचा पहले दिन मैं अपने ऑफिस में, बहुत लोग काम करते सोइयो थे ऑफिस में भी, 100 से भी ज्यादा। कहा मैं चुप, अभी सब लोगों में खलबली कि आज साहब के घर में लगता कुछ हो गया है, ट्रेजडी हुई है कुछ, आज तो साहब चुप चुप हैं। दूसरा दिन हुआ, मैं आराम से अपना काम किया, चक्कर भी लगाया शांति से, दूसरा दिन भी वैसे ही लोगों में, और अब कोई 4-5 बड़े ऑफिसर भी थे साथ में, वो भी साहस न करें आके कुछ कह दें, पूछ लें कि सर क्या हुआ, कोई साहस नहीं कर रहा। तीसरा दिन आ गया, कहा आखिर एक ऑफिसर से रहा नहीं गया, और वो आया, कहा सर आप हमें बताओ आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ हो गया है क्या। तब ये हंसा और इसने उसको कहा, यहाँ ओम शांति भवन में सभा में अनुभव सुनाया था कि भाई मैंने हमारे बताया, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और वहाँ 6 मास सबको क्रोध मुक्त रहने के लिए कहा गया, तो आप जानते हैं मैं तुम पे बहुत गुस्सा करता था, अब मैंने संकल्प किया है मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। और ये बात फटाफट फैल गई सारे ऑफिस में फैलते कितनी देर लगती है, 5-10 मिनट में तो सबको पता लग गया कि अब साहब ने क्रोध न करने की प्रतिज्ञा कर ली है, क्या हुआ होगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा सुनकर शायद लोग अलबेले हो जाएंगे या इसका मिसयूज करेंगे, लेकिन कहा सभी के मन में मेरे लिए सम्मान हो गया, प्यार हो गया, क्योंकि बहुत गुस्सा आता था, और सब बहुत सहयोगी बन गए। तो देखो, एक और क्रोध से चिल्ला चिल्ला कर काम कराना, खुद भी दुखी दूसरे भी दुखी, घर जब जाएगा ऐसा व्यक्ति कैसा जाएगा, सारा गुस्सा बच्चों पे पत्नी पे उतरेगा, फिर शांति हो गई। ऐसा जीवन लोग देखना चाहते हैं हमारा, इसलिए जिसको भी क्रोध आता हो थोड़ा बहुत, बहुतों ने तो छोड़ ही दिया होगा, किसी इसने बहुत छोड़ दिया हाथ उठाओ जरा, छोड़ दिया, बहुतों ने छोड़ा, उठाओ उठाओ हाथ, आपको बाबा इनाम देगा, ऊपर से देख रहा है, बहुत अच्छा। बाबा के बच्चे बनते ही बहुत छूट जाता है क्रोध, थोड़ा भी कोई ध्यान देना तो छूटने लगता है। जिसने आधा छोड़ दिया वो हाथ उठाओ, आधे वाले भी तो आधे तो होंगे, ठीक है बहुत अच्छा, आगे वाला हाथ में नहीं उठवाऊंगा। जिसको आता हो वो अब छोड़ने का संकल्प ले ले, और इसकी सहज विधि है, मैंने ये प्रयोग करा है कुछ लोगों से जो पूछते हैं हमें क्रोध बहुत आता है, सवेरे उठ के सच्ची फीलिंग सहित 7 बार संकल्प करेंगे, मैं आत्मा शांत हूं, मैं शांत हूं, ऐसे धीरे, मैं बिल्कुल शांत हूं, मेरा चित्त शांत है, तेजी से असर होगा, लेकिन उठते ही करना है। खाट छोड़ते छोड़ते अब नल तक भी जाओ ना मुंह धोने, इतने में कर दो। तो सवेरे हमारा अंतर मन जागृत होता है, वो इसे स्वीकार कर लेगा, मैं शांत हूं, और जब भी क्रोध का उबाल आएगा ना वो रोकेगा, नो शांत, और प्रैक्टिस करते करते वो क्रोध का जो उबाल आता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और क्या नहीं होना चाहिए भाइयों के जीवन में, अंदर एक बाहर दूसरा, धोखा नहीं। बाबा के कुछ बच्चे अभी तक भी ऐसे हैं जो पैसे के मामले में ईमानदार नहीं रहते, किसी से ले लिया देने की नहीं सोचते, उनका संकल्प भी अब देना नहीं है, हिंदी में इसे कहते हैं नियत साफ नहीं है, ऐसे लोगों को जीवन में सुख नहीं मिलता, या मिलेगा नहीं मिलता। इसलिए बहुत अच्छा जीवन बिताना है। किसी से कुछ लिया है संकल्प करो डबल देंगे भाई तुम्हें। जिनके पास ये संकल्प है उनके पास डबल आ जाता है। अब एक गुह्य बात मुझे याद आ गई, वो आपको सुना देता हूं। जब हमारे मन में सुंदर विचार होते हैं, दूसरों को सुख देने की भावना होती है, दूसरों को मदद करने की इच्छा होती है, जिसको बाबा रहम दिल कहते हैं ना, तब क्या होता है, ध्यान से सुन ले। इस संसार की सारी श्रेष्ठ शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इस संसार में बहुत सारे फरिश्ते भी कार्य करते हैं जो आम लोगों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। ये शिव बाबा की एक बड़ी फौज भी है, ऐसा समझ लें आप। जैसे एडवांस पार्टी वाले फरिश्ते रूप में सेवा करते हैं, ऐसे कुछ और फरिश्ते भी बाबा के सहयोगी हैं ऊपर, ब्रह्मा बाबा के। ये सारी शक्तियां हमारे साथ मददगार बन जाती हैं, हमारा मार्ग सरल होने लगता है। और अगर आपके मन में बुराई है, भाई फलाने व्यक्ति का पैसा था 10 लाख, क्या है उसके पास, तो बहुत है, नहीं देना है, देंगे नहीं तो चल जाएगा काम। ये संकल्प करते ही बहुत सारी अच्छी शक्तियां आपसे दूर, बुरी शक्तियां प्रवेश। इसलिए जितने अच्छे हम रहेंगे, जितने अच्छे विचार रखेंगे, जितनी भलाई करेंगे, ये अच्छी शक्तियां हमारे साथ होंगी जो बुरे समय में हमें मदद करेंगी बहुत ज्यादा। और ये सीन आप सब देख रहे हैं और अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा देखेंगे कि जो लोग पाप कर रहे हैं पैसे से भी, पैसे के लिए भी, उनकी बहुत दुर्गति होगी। उन्हें दिखाई देगा कि पैसा तो है पर सुख नहीं है, पैसा तो है पर अच्छा खाना नहीं खा सकते। जैसे अभी हुआ ना, गाड़ियां तो सबके पास हैं परंतु तेल नहीं है, जा ही नहीं सकते। ये तो छोटा सा सीन था ना, जब बड़े बड़े आएंगे, मान लो ऐसा हो जाए कि सड़कें धस जाएं सारी, जो जहां है वहीं रह जाए, तब भी तो जीना पड़ेगा ना। लेकिन ये सत्य है, जिनके पुण्य कर्म बहुत हैं, जिन्होंने बाबा को पकड़ लिया है अच्छी तरह, समझते ना पकड़ना, जो कंबाइंड हो गए हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सड़क भी तब टूटेगी जब वो घर पहुंच गए होंगे, और जिनके पाप ज्यादा है सड़क तब टूटेगी जब वो वहीं होंगे, जब आगे नहीं जा सकते, यहीं खड़े रहो। पाप और पुण्यों का खेल अब दिखाई देगा। सुना होगा आपने यूपी में बहुत सड़कें फटी, एकदम से कारें जो जा रही थी अंदर ही चली गई, कई इतने वो ब्रेक लगाए इतने तो गई अंदर। ये सब पाप कर्मों का खेल अब चलने वाला है। इसलिए हम सभी को अपने पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है और अपने चित्त को ऐसा निर्मल कर दें, ऐसा अपने मन को शुभ भावनाओं से भर दें कि हमारी भावनाएं देखकर लोगों को लगे सचमुच ये ज्ञानी हैं, ये सच्चे ज्ञानी हैं, इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सभी मधुबन की शांति का फायदा उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं ना। अच्छी तपस्या, थोड़ी सेवा है, बाबा के रूम में भी 4 बार सबको बैठना है, घंटों घंटों नहीं तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर, ताकि एकाग्रता अच्छी हो जाए। यहाँ तो बहुत स्थान है ना, शांति स्तंभ है बड़ा, घंटों बैठ सकते हैं। बैठ के भी अच्छी साधनाएं कर लेनी है। चलो अब हम पुण्य आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, इस स्वमान के साथ बाबा की याद में बिल्कुल मगन होंगे। गीत बहुत सुंदर है,
प्रभु का ध्यान। प्रभु का ध्यान।